الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما زكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. तो इस क्लास के अंदर सूरह मायदा की आयत नंबर 3 चल रही है, उसकी तफसीर हम आज पढ़ना शुरू कर रहे हैं, यानी मारुफ मसाइल, मारुफ कुरान जिल्द नंबर 3 के सफ़ा नंबर 28 से तर्जुमा इस आयत का और खुलासे तफसीर हमने पिछली क्लास में मुकम्मल पढ़ ली थी। अब मारुफ मसाइल में हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सूरह माईदा की तीसरी आयत, ठीक है। अच्छा, एक मिनट में ज़रा एक बात क्लियर कर लूँ, कुछ दोस्तों को शायद बात क्लियर नहीं हुई है। वो ये है कि अगर आप में से किसी की ईमहत की क्लास स्केड्यूल हुई भी है इस टाइम पर, ठीक है, तो आपने वो वाली क्लास लेनी है, ये वाली क्लास नहीं लेनी है, ठीक है। तो मेरा मैसेज शायद क्लियर नहीं हुआ लोगों को, या बिल्कुल मुझे लगता है जैसे मैंने कोई मेरी बात गलत समझ ली गई है, मैं अपनी बात बयान नहीं कर पाया हूँ। मैंने कहा था कि सब ई महत की क्लास लेंगे। अच्छा, ई महत की क्लास है ही नहीं, अगर है ही नहीं तो फिर ठीक है इस टाइम पर, लेकिन जिनकी है ना तो उनको वो वाली क्लास लेनी है, ठीक है। बस ठीक है, चले जदाकुमुल्लाह। तो मारिफ मसाइल आपके बैच को तो हाँ सही याद आ गया कि आपकी तो क्लास थी नहीं इस टाइम पर। अच्छा, तो मारुफ मसाइल में फरमाते हैं कि ये सूरह माईदा की तीसरी आयत है जिसमें बहुत से उसूल और फरोई अहकाम व मसाइल बयान किए गए हैं, ठीक है। उसूल भी बयान किए गए हैं, उसूल कहते हैं बिल्कुल बुनियाद को, जड़ को, और फरोई मसाइल यानी जो कि उसूल से निकलते हैं, ब्रांचेस जो निकलती है, जैसे एक दरख्त के अंदर जड़ होती है और फिर जड़ में से जो है वो तना निकलता है और तने में से फिर शाखें निकलती हैं। तो इसी तरह से शरीयत के अंदर भी जड़ है और फिर तना है और फिर उसकी शाखें हैं। तो एक आयत के अंदर उसूल और फरोई अहकाम, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला का कलाम है ना भाई, कोई मामूली चीज को थोड़ी है। तो अल्लाह ताला एक ही जुमले के अंदर जो है वो क्या क्या, यानी जिसको कहते हैं उर्दू के मुहावरे में, समंदर को कूजे में बंद कर देना, ठीक है, ये तो मुहावरा है, लेकिन अल्लाह ताला एक आयत में उसूल और फरोई अहकाम बयान कर गए। पहला मसला हलाल और हराम जानवरों का है। जिन जानवरों का गोश्त इंसान के लिए मुजिर, यानी नुकसानदेह है इंसान के लिए, ख्वाह जिस्मानी तौर पर कि उससे इंसान के बदन में बीमारी का खतरा है, या रूहानी तौर पर कि उससे इंसान के अखलाक और कल्बी कैफियात खराब होने का खतरा है, तो उनको कुरान ने खबाइस करार दिया, यानी खबीस यानी नुकसानदेह, नुकसान पहुंचाने वाली चीज, उसको अरबी में खबीस कहते हैं और उसकी जमा खबाइस है, ठीक है। तो नुकसान पहुंचाने वाली जो भी चीज होती है ना, शरीयत ने उसको खबीस करार दिया और उसको हराम कर दिया। और जिन जानवरों में कोई जिस्मानी या रूहानी मुजर्रत नहीं है उनको तैयब और हलाल करार दिया, ठीक है। ये है यानी हिकमत, क्यों कोई चीज अल्लाह ताला ने हलाल करार दी, क्यों कोई चीज अल्लाह ताला ने हराम करार दी, इस वजह से, क्योंकि हलाल चीजें जो हैं वो हमारे फायदे के लिए हैं और हराम चीजें जो हैं वो हमारे नुकसान के लिए, यानी इसमें अल्लाह का कोई फायदा नहीं हो रहा या अल्लाह का कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा था, बल्कि खालिसतन हमारा ही फायदा और हमारा ही नुकसान है। ठीक है, अच्छा फिर दूसरी बात यह है कि भाई ये अल्लाह ताला जो है ना, ये कोई दुनिया की कोई हुकूमत तो है नहीं कि दुनिया की हुकूमत ने जो है ना वो रिसर्च के जरिए से मालूम किया कि फलानी चीज जो है वो मेरे अवाम के लिए, हमारे अवाम के लिए फायदा मंद है, तो उसको जो है ना वो हम अपनी अवाम के लिए एक्सेसिबल कर देते हैं, ठीक है ना, वो उनके लिए जायज कर देते हैं, और फलानी चीजें हमारे अवाम के लिए हमने अपनी रिसर्च के जरिए से ये डिस्कवर किया है कि नुकसानदेह हैं, तो हम अपने अवाम को मना कर देते हैं कि तुम ये वाले काम ना करना या ये वाली चीजें मत खाना। ये दुनियावी हुकूमत का तो मामला नहीं है, ये तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत और दुनियावी हुकूमत में क्या फर्क है कि दुनियावी हुकूमत तो रिसर्च के जरिए से, राइट, अपने तहकीक के जरिए से ये मालूम करती है कि कौन सी चीज फायदेमंद है, कौन सी चीज नुकसानदेह है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तो बनाया है, ठीक है ना, सिर्फ हमें नहीं बनाया बल्कि उन चीजों को भी बनाया जो चीजें हमारे फायदे के लिए हैं और जो चीजें हमारे नुकसान के लिए हैं, खुद ही बनाया और खुद ही हमें बताया कि ये तुम तुम्हारे लिए हलाल है और ये चीज तुम्हारे लिए हराम है। ठीक है, तो अल्लाह की अथॉरिटी जो है ना ये कामिल अथॉरिटी है, दुनिया की कोई हुकूमत या दुनिया की कोई भी अथॉरिटी हो उसकी अथॉरिटी कामिल नहीं होती, बहुत ही नाकिस अथॉरिटी होती है उसकी। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने ये तमाशा किया क्यों, ये खेल खेला क्यों, ये तो गोया एक खेल हो गया ना कि खुद ही बनाते हैं, खुद ही उसके बाद फिर जो है वो हलाल हराम जो है वो कह देते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है वो रिवॉर्ड भी रख देते हैं हलाल के ऊपर, और जो है वो हराम के ऊपर पनिशमेंट भी रख देते हैं। है तो ये तो गोया ऐसे ही है जैसे कि कोई बच्चा कोई गेम गेम खेल रहा हो और फिर खुद ही जो है ना वो कैरेक्टर्स को जो है वो अपने तरफ से जो है वो नाम असाइन कर दे, काम असाइन कर दे, और फिर जो है वो एक तखयलाती गेम खेलना शुरू कर दे। ठीक है, तो क्या अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला ऐसे ही है? नहीं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का मामला क्या है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ना वो हसीन है, वो हसीन है, ठीक है ना, और हसीन के साथ क्या होता है भाई, हसीन का मामला क्या होता है कि हसीनों को हर बात सजती है, हसीनों को हर बात सजती है, वो जो चाहे करें, ठीक है ना, वो जो चाहे करें, उनकी मर्जी किसी चीज को ऐसे बनाए, किसी चीज को वैसे बनाए, किसी चीज को हलाल करें, किसी चीज को हराम करें, ठीक है ना। और फिर अल्लाह ताला ने ये किया क्यों, जैसे कि इन्होंने जवाब दिया, टेस्ट के लिए किया, ठीक है ना, खलकल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, है ना, ये हलाल हराम तो छोटी चीजें हो गई, मौत और हयात ही अल्लाह ताला ने टेस्ट करने के लिए बनाई है। तो ये पूरा का पूरा जो बोर्ड गेम है, पूरा का पूरा जो ये मैच है, ये सारा का सारा टेस्ट के लिए अल्लाह ताला ने बनाया है। अल्लाह ताला की मर्जी भाई, हम कौन होते हैं अल्लाह को की मर्जी को जो है वो अप्रूव करने वाले या डिसअप्रूव करने वाले, लाइक करने वाले या डिसलाइक करने वाले, हमारी ये औकात नहीं है, क्योंकि हम हसीन नहीं है, ठीक है ना, हम हसीन नहीं है, हसीन कौन है, अल्लाह रब्बुल इज्जत, ठीक है, तो हमें हर बात नहीं सचती क्योंकि हम हसीन नहीं है, ठीक है ना, हमारी तो ऊपर से थोड़ी बहुत जो हुस्न नजर भी आता है ना, जरा सा खराश लग जाए तो वो हुस्न खत्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है ना, जरा सी खाल जो है ना वो उधड़ जाए तो अंदर से जो है वो पीप निकल आती है और खून निकल आता है और गोश्त नजर आना शुरू हो जाता है और न जाने क्या क्या हो जाता है, तो हमारा तो कोई हुस्न है ही नहीं, ठीक है, हमें अपनी औकात जो है वो याद रखनी चाहिए, हमारे परवरदिगार भी औकात हमें याद दिलाता रहता है, ठीक है, तो इस वजह से औकात याद रखना ये कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि ये मकसूद है हमारे रब का कि हम अपनी औकात याद रखें, ठीक है। तो अब ये जो है ना फिर बाकी तफसीलात हैं कि भाई क्या खराबी है, किसके अंदर क्या खराबी है, तो इसके ऊपर फिर जैसे जैसे इंसानों ने तहकीक की तो वैसे वैसे उनके सामने ये चीजें आती गई, पहले नहीं थी ये सारी चीजें लोगों के सामने, ठीक है, साइंस की तरक्की के साथ साथ ये चीजें तो सामने आई हैं, लेकिन फायदा उसी को हुआ जिसने इसको अल्लाह रब्बुल इज्जत से जोड़ा, और जिसने अल्लाह से नहीं जोड़ा तो साइंस की तरक्की से उसको फायदा कोई नहीं हुआ बल्कि उल्टा नुकसान हुआ, वो अपने आप को खुदा समझना शुरू हो गया, राइट, या जो खुदा नहीं था उसको खुदा समझना शुरू हो गया, तो ये नहीं है कि साइंस इज एब्सोल्युटली बेनिफिशियल, नहीं, बेनिफिशियल एब्सोल्युटली नहीं है, बल्कि डिपेंड्स ऑन हाउ यू टेक इट एंड व्हाट डू यू डिराइव फ्रॉम इट। ठीक है, तो जैसे एक PIG की एक मिसाल आप लोगों के सामने भी होगी, आप लोगों ने सुना ही होगा कि भाई इसके जो गोश्त है तो इसके अंदर जो है वो बे इंतहा बीमारियां, बहुत सारी बीमारियां, ठीक है, फिजिकल बीमारियां। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो इसके अंदर जो है वो यानी अखलाकी बीमारी, ठीक है, कुछ ऐसे अखलाकी मामलात हैं सूअर की जिंदगी में कि जो कि किसी दूसरे जानवर के अंदर नहीं, किसी दूसरे जानवर में नहीं है। ठीक है, वो इतने बुरे हैं, इतने बुरे हैं कि इस क्लास के अंदर हम उसको बयान भी नहीं कर सकते। इतने गलीज और इतने गंदे और इतने नजिस हैं वो मामला कि बयान भी नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला ने उसकी फितरत ऐसे बनाई है, किस लिए बनाई, क्यों बनाई, इम्तिहान के लिए कि भाई कौन जो है वो बात मानता है और सदूर रहता है और कौन जो है वो बात नहीं मानता। ठीक है, तो ये चीजें फिर साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस के जरिए से और लेबोरेटरी एग्जामिनेशंस के जरिए से ये चीजें फिर सामने भी आ रही हैं। उसी तरीके से खून को जो है वो कंज्यूम कर लेने के अंदर खराबियां, और जो खून जो है वो जिस मीट के अंदर बाकी रह जाए, अगर वो उसमें से बाहर ना निकले बल्कि अंदर ही अंदर जो है वो रह जाए, तो फिर उसके अंदर जो मीट के अंदर जो खराबियां आती हैं, चाहे वो किसी हलाल जानवर का मीट क्यों ना हो, बकरे का मीट क्यों ना हो, अगर आपने उसको ज़बह नहीं किया कि उसके अंदर से इतनी मिकदार में जो है वो खून निकल जाए, तो फिर उसकी गोश्त जो होता है उसकी हेल्थ वैल्यू जो होती है वो वैसी नहीं होती जैसे कि जब उसमें खून निकल जाता है तो उसकी हेल्थ वैल्यू जैसी होती है। ठीक है, तो उस लेवल की नुकसान शायद ना हो जितना कि सुअर के गोश्त के अंदर नुकसान होता है, मैदा के गोश्त के अंदर उतना उस लेवल का अगर ना भी हो ये हमें नहीं मालूम, ये तो डॉक्टर हजरात ही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं या जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च करी है वही ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन है नुकसान। ठीक है, हमें इस बात का यकीन है, ये साइंस तो आज आई है ना, मुसलमानों को तो पहले ज्यादा यकीन था बगैर साइंस के अल्लाह के अहकाम के ऊपर। ठीक है, तो आगे फरमाते हैं कि इस आयत में फरमाया है कि हराम किए गए तुम पर मुर्दार जानवर, मुर्दार से मुराद वो जानवर हैं जो बगैर जबाह के किसी बीमारी के सबब या तबई मौत से मर जाए। ठीक है, ऐसे मुर्दार जानवर का गोश्त तिब्बी तौर पर भी इंसान के लिए सख्त मुजिर और रूहानी तौर पर भी मुजिर है। तो तिब्बी का तो फिर एरिया या तो हुकमा का है या फिर जो है वो दत्तूर हजरात का है। अलबत्ता हदीस शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीजों को मुस्तस्ना करार दिया है, एक मछली और दूसरे टिड्डी, इसको लोकस्ट कहते हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा कि पहले कुरान पर यकीन था, अब साइंस पर यकीन है। ठीक है, तो वो उल्टी गंगा वगैरह बहाना वाला मामला आजकल चल रहा है, यकीन कुरान पर था, साइंस ने तो खाली उस यकीन को जो है वो मजबूत करना था, मजीद मजबूत करना था, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मामला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मामला था ना कि जब उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ कि आप कैसे जो है वो मरे हुए को जो है वो जिंदा करते हैं, तो अल्लाह ताला ने उस वक्त उनसे यही पूछा था ना कि क्या आपको इतमाद नहीं है, फरमाया नहीं, मुझे मैं यकीन हासिल करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ऑब्जर्व करना चाहता हूँ, व्हाट इज साइंस, साइंस इज ऑब्जर्वेशन, जो ऑलरेडी अल्लाह ताला ने तख्लीक करी हुई है और हमारे चारों तरफ बिखरी हुई है वो तख्लीक, उसको ऑब्जर्व करना, इसी को तो साइंस कहते हैं। ठीक है ना, और इसी के अंदर फिर आप मजीद और करते चले जाएं, ऐनुल यकीन, उसके लिए सुभान अल्लाह लफ्ज भी है अरबी जुबान के अंदर, ऐनुल यकीन यानी अपनी आंखों से देख करके जो यकीन हासिल होता है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ऐनुल यकीन हासिल करना चाहते थे, अगर हमारा भी ईमान बना होता तो साइंस ने हमें ऐनुल यकीन अता करना था, साइंस ने हमें क्या करना था, ऐनुल यकीन अता फरमाना था, लेकिन मसला क्या हो गया, हम अपने गुनाहों की वजह से और दीन को जो है वो कमतर, अपनी जिंदगी में कमतर समझने की वजह से हम बन गए गुलाम। ठीक है, और जब हम बन गए गुलाम तो हमारे दुश्मनों ने हमारा यकीन जो है ना वो अपने निजाम के ऊपर बना दिया, कुरान के ऊपर तो निजाम, कुरान के ऊपर तो यकीन हमारा बना ही नहीं, हमारी तो ऐसी जहन साजी नहीं हुई, ऐसी तरबियत नहीं हुई, तो अब जो है ना वो उन्होंने बना दिया अपने वो निजाम के ऊपर, और हम मरूब थे उनसे तो हम बन गए। तो अब जो है ना वो हम कुरान को जो है ना वो साइंस, यानी कि साइंस पहले आ जाती है और फिर उसके ऊपर जो है वो जब दीनदार बनते हैं तो फिर कुरान उसके बाद में आता है। ठीक है, तो उल्टा मामला, हालांकि होना ये चाहिए था कि ईमान पहले बनता और साइंस के जरिए से वो यकीन में तब्दील होता, ऐनुल यकीन में। ठीक है, आज भी अगर हम तौबा कर लें दुनिया की मोहब्बत से, दुनिया की मोहब्बत से जो कि अजमत में तब्दील हो चुकी है, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत, इतनी मोहब्बत कि वो अजमत में तब्दील हो चुकी है। ठीक है, अगर हम इससे तौबा कर लें तो फिर यही साइंस जो है ना, ये हमारे लिए फिर ऐनुल यकीन का सबब बन जाएगी। ठीक है, यही काफिरों की स्टडी की हुई साइंस, यही जो है वो जिसकी भी है, काफिर हो या मुसलमान हो या जो भी हो, जिसने भी साइंटिफिक डिस्कवरीज करी हैं और जो भी करा है, वो ऐनुल यकीन का सबब बन जाएगा। ठीक है, लेकिन हम तौबा करें तब ना, तौबा ही नहीं करते तो फिर क्या करें। ठीक है, हम तो अपने गुनाहों को जस्टिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है ना, तो तौबा की तो तौफीक नहीं मिल सकती ना इस तरीके से। एनीवे, इस आयत में फरमाया है कि हराम किए गए तुम पर मुर्दार जानवर, मुर्दार से मुर्दार जानवर हैं जो, अच्छा ये पढ़ चुके हैं ना, अल्बत्ता हदीस, हाँ ये भी पढ़ चुके हैं, टिड्डी, तो लोकस्ट इसको कहते हैं, जो वो उनका बाकायदा एक सैलाब भी आता है, वो आती हैं टिड्डियां। अच्छा, मछली और टिड्डी का मामला क्या कि खून तो इनके अंदर भी, मछली में भी जो है वो जो खून नजर आता है, लेकिन उस खून में और जो जमीन के जानवर होते हैं उनके खून में जो है वो फर्क होता है, तो उस मछली को जबा नहीं करना होता, ठीक है, कि मछली के अंदर से खून निकलेगा तो उसके बाद मछली जो है वो जायज होगी, नहीं ना, जो है वो टिड्डी को जबा करना होता है, ठीक है, बल्कि हमारे अरब भाई जो है वो तो ऐसे ही खा जाते हैं, बल्कि वो उनके शायद वो पर भी नहीं उतारते उसके, ऐसे ही जो है वो खा जाते हैं, पेट में उनके पर जमा होते रहते हैं, बाद में पेट दर्द होता है ना, तो फिर जो है वो डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन करते हैं तो अंदर से पर निकलते हैं टिड्डी के। ठीक है, तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए, लेकिन वैसे हमने देखा कि ये क्या करते हैं, प्रॉपर खाने का तरीका ये है कि उसके अंदर से उसका जो गोश्त वाला जो पार्ट होता है ना वो निकालते हैं, वो खा डालते हैं, ठीक है, और बाकी चीज जो है ना जो कार्टिलेज वगैरह जो होते हैं उसको उसको फेंक देते हैं। मछली को भी तो ऐसे ही करते हो ना भाई, क्या उसका जो है वो कांटे और उसकी छिलका और ये सारी चीजें, फिन्स वगैरह सब खा जाते हैं, नहीं उसके जो गोश्त था खाली उसको खाते हैं, बाकी चीजों को फेंक देते हैं, तो टिड्डी के साथ भी भाई ये करो। ठीक है, तो ये हदीस मुसनद अहमद, इब्न माजा, दारकुतनी, बैहकी वगैरह ने रिवायत की है। अच्छा, दूसरी चीज जिसको इस आयत ने हराम करार दिया है वो खून है, और कुरान करीम की दूसरी आयत में औ दमम मसफूहन फरमाकर ये बतला दिया गया कि खून से मुराद बहने वाला खून, मसफूह, ठीक है, यानी जो कि बहने वाली चीज हो, तो इसलिए जिगर यानी जिसको लीवर कहते हैं, और तिल्ली जिसको अंग्रेजी में स्प्लीन कहते हैं, ठीक है, तो जिगर और तिल्ली बावजूद खून होने के इस हुक्म से मुस्तस्ना है। ठीक है, लीवर के तो सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, तो जिगर जो है वो तो पता चला कि भाई मतलब हमारे हुक्मा को तो पहले से पता था ये वाली बात, लेकिन अब डॉक्टरों को भी पता चल गया कि भाई जो है ना ये लीवर जो है, तो लीवर में जब कैंसर हो जाता है ना तो फिर बचने की कोई उम्मीद नहीं होती, ऐसे ही सुना है मैंने, कम से कम मुझे पता नहीं वैसे, लेकिन सुना मैंने यही, लिवर कैंसर, ठीक है, सबसे खतरनाक कैंसर जो है वो शायद लिवर कैंसर ही हो। बहरहाल, तो लिवर इज ऑल ब्लड, और इसी तरह से तिल्ली जो है ये भी ब्लड यानी फिल्टरिंग, फिल्ट्रेशन वगैरह करती है, और जो है वो ब्लड सेल्स वगैरह को अपने अंदर स्टोर रखती है, तो ये इनके अंदर खून ही है, रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, तो ये होने के बावजूद इस हुक्म से मुस्तस्ना है क्योंकि उनके जो है ना वो बहने वाले खून नहीं है, ठीक है, वो उनके अंदर मौजूद है और बस वो, ठीक है, यानी फ्लोइंग आउट नहीं है, आर्टरीज के अंदर है या कैपिलरीज के अंदर है या वेन्स के अंदर है, ठीक है, लेकिन उससे बाहर निकल करके फ्लो नहीं कर रहा है, तो इस वजह से वो इस हुक्म से मुस्तस्ना है, यानी वो हलाल है। हदीस मस्कूर में जहां मैता से मछली और टिड्डी को मुस्तस्ना फरमाया है, तो ये लफ्ज जो है वो मैं पहले भी नहीं कैच कर सका, उसी में या तो किसी किताब का नाम है या उसी में शायद जिगर और तहाल को खून से मुस्तस्ना करार दिया है, तो जिगर तो पहली बात हो चुकी, और तहाल जो है ना ये भी वही तिली को ही कहते हैं, स्प्लीन, ठीक है, तो उनको भी जो है वो यानी हदीस में ही जो है वो जिगर और तहाल को खून से मुस्तस्ना करा दिए, यानी ये जायज है, ये हलाल है। तीसरी चीज लहमु खिंजीर है जिसको हराम फरमाया है, यानी आयत के अंदर लहमु खिंजीर, लहम जो है वो गोश्त को कहते हैं, तो लहम से मुराद उसका पूरा बदन है जिसमें चर्बी पट्टे वगैरह सभी दाखिल हैं, सिर्फ ये नहीं कि गोश्त हराम है और उसकी बाकी चीजें जो है हलाल, पूरा वजूद दाखिल है इसमें। चौथे, वो जानवर जो गैरुल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया हो, फिर अगर ज़बह के वक्त भी उस पर गैरुल्लाह का नाम लिया है तो वो तो खुला शिर्क है। ठीक है, अगर गैरुल्लाह के लिए नामजद कर दिया गया है तो वो जानवर हलाल होगा यानी हराम होगा, बंदा काफिर नहीं होगा। लेकिन अगर ज़बह के वक्त उस पर गैरुल्लाह का नाम भी लिया है तो ये तो यानी अमली पूरा का पूरा शिर्क है, और ये जानवर बा इत्तेफाक मुर्दार के हुक्म में है, यानी बेशक ज़बह किया है और चार रगें काट दी हैं और खून भी सारा का सारा उसके अंदर से बाहर निकल गया है, लेकिन फिर भी ये मुर्दार ही का हुक्म इसके ऊपर लगेगा यानी हराम। ठीक है, यानी देखें फिजिकली खाली हराम की बात नहीं है कि भाई खून उसके अंदर है तो इस वजह से हराम है, नहीं ये अलग मसला है, यानी स्पिरिचुअल एक्शन जो होता है उसका फिजिकल बॉडी के ऊपर भी इफेक्ट होता है। ठीक है, तो स्पिरिचुअल इफेक्ट भी होता है और उसका जो है ना फिर इंसान के फिजिक्स के ऊपर भी, फिजिक्स के ऊपर भी इफेक्ट होता है, बजाहिर नजर नहीं, लेकिन हो रहा होता है इसका असर, या इंसान के बॉडी पे या उसकी जानवर के बॉडी के ऊपर, क्योंकि उसके ऊपर शरीयत का हुक्म एक ही है, जैसे मुर्दार का हुक्म है वैसे ही जो है वो इस जानवर का भी हुक्म है। जैसे कि मुशरिकीन अरब अपने बुतों के नाम पर ज़बह किया करते थे, या बाज जाहिल किसी पीर फकीर के नाम पर, ठीक है, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा, मतलब हमारे यहाँ से मुराद ये कि सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में नहीं, ये जहाँ कहीं भी इस किस्म के मामलात है ना अरब वर्ल्ड में भी है। हम लोग पता नहीं क्यों पाकिस्तान इंडिया में समझते हैं कि अरब जो है ना वो सारे के सारे मुवाहिद हैं और कोई जो है वो शिरकिया काम नहीं करते, भाई ऐसा नहीं है, एक से एक जो है ना इस किस्म की बिदतें और खराफात और मुशरिकाना आमाल आपको इजिप्ट में भी मिल जाएंगे और आपको इराक में भी मिल जाएंगे, ठीक है, और ईरान वगैरह को तो रहने ही दें। ठीक है, तो ये हरकतें जो है वो हो रही होती हैं जहाँ भी, तो पीर फकीर के नाम पर किसी भी वली अल्लाह है या कोई है, ये हिंदू भी तो यही करते हैं, ये इनके जो है ना वो सार सबके बुत नहीं होते, ठीक है, जो के लकड़ी के बने हुए या पत्थर के बने हुए, सबके बुत नहीं होते, सब बहुत सौ के पास तो सिर्फ एक तस्वीर होती है इनके किसी पुराने की, बुजुर्ग की, वो अच्छा खासा जो है ना वो दाढ़ी और टोपी और इस तरह का अच्छा खासा, यानी कोई मतलब उलमा की शक्ल तो खैर उसके अंदर उनके अंदर वैसा वो नहीं होता, फटकार नहीं होती, लेकिन इनकी शक्लों पे तो होती है, लेकिन बाकायदा तस्वीर में दाढ़ी और इसके इस तरह का ना कोई जोगी वोगी टाइप की कोई कोई शख्सियत होती है, उसकी तस्वीर होती है, दैट्स इट, और इसके आगे जो है वो अपनी या सारी की सारी पूजा कर रहे होते हैं। तो वो भी कोई किसी जमाने में कोई अल्लाह का वली अगर था, हो सकता है था, ठीक है, सन्यासी हैं लोग, तो उसको फिर इन्होंने पूजना शुरू कर दिया, और इसी तरीके से जो है वो बुत परस्ती शुरू भी हुई थी, इवन सबसे पहले हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में बुत परस्ती शुरू हुई थी, तो वो ऐसे ही शुरू हुई थी, नेक लोगों का इंतकाल हो गया तो शैतान ने आकर के उनसे कहा कि भाई तुम तो इतने अच्छे लोग थे, तुम्हारा इतना ख्याल करते थे और तुम्हारी आंखों की ठंडक थे, तो अब वो दुनिया से चले गए, तो ऐसा करो ना उनकी कोई तस्वीर वस्वीर बना लो, ठीक है, ताकि वो तुम्हें याद रहा करें, तो यादगार के तौर पे तुम बस उनकी तस्वीर बना लो, ठीक है। तो इन लोगों ने जो है वो शैतान की बात मान ली। हर जमाने में अल्लाह के नबी या अल्लाह के नबियों के जो सहाबा थे हर जमाने में मौजूद थे, और वो हमेशा लोगों को इस किस्म के गलत कामों से रोकते थे जो कि शैतान उनको करने के लिए कहता था। तो लोगों ने क्या किया, इनकी बात नहीं मानी बल्कि शैतान की बात मान ली, जब शैतान की बात मान ली तो इन्होंने फिर तस्वीर बनाई, शैतान ने अगला मरहला, भाई तस्वीर तो है अब जरा इनके साथ जो है ना वो अकीदत का भी मामला कर लिया करो, जरा जा करके इनको हाथ भी अकीदत से रख दिया करो उनके ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये शैतान की मानते गए, शैतान इनको स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप लेकर के चलता गया, हत्ता के पूरा का पूरा शिर्क में इनको मुबतला कर दिया। बात शुरू कहाँ से हुई थी, अल्लाह के नेक बंदों की शबीह बनाने से बात शुरू हुई, ठीक है। तो बहरहाल अगर बवक्त ज़बाह नाम तो अल्लाह ताला के लिए, देखिए कितना अहम ये जुमला है, कि बाज जाहिल किसी पीर फकीर के नाम पर, और अगर बवक्त ज़बाह नाम तो अल्लाह ताला का लिया मगर जानवर किसी गैरुल्लाह के नाम पर नजर किया हो और उसकी रजामंदी के लिए कुर्बान किया है, तो जम्हूर फुकहा ने उसको भी मा उहिल्ला लिगैरिल्लाह बिही के तहत हराम करा। यानी बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर जुबान से कह रहा है, लेकिन दिल में ताजीम किसकी है? जिसके आस्ताने के ऊपर ज़बह कर रहा है या जिसकी रजा के लिए ज़बह कर रहा है। ठीक है, तो दिल में ताजीम अल्लाह ताला इसको देखते हैं। जुबान पे अल्फाज जो है ना, जब दिल से मैच ना कर रहे हो ना, तो फिर अल्फाज की कोई वैल्यू नहीं। अल्लाह ताला तो यंजुरु इला कुलूबिकुम व इला आमाल, हमारे कुलूब की तरफ देखते हैं। तो दिल की नीयत जो है वो कुछ कर रही है, अल्लाह को कुछ बता रही है, और जुबान के अल्फाज जो है वो अल्लाह ताला को कुछ और बता रहे हैं। तो अल्लाह ताला तो प्रेफरेंस दिल को देंगे ना, जुबान को तो नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें अपने दिलों को टटोलते रहना है और दिलों की इसलाह के ऊपर सबसे ज्यादा मेहनत करनी है। वक्त जुबान की इसलाह पर मेहनत नहीं करनी, दिल की इसलाह पर मेहनत करनी है। अच्छा, पांचवी, मुनखनिकाह, यानी वो जानवर हराम है जो गला घोट कर हलाक किया गया हो या खुद ही किसी जाल वगैरह में फंस कर दम घुट गया हो उसका। ठीक है, जाल में फंस करके मछली का दम घुट जाता है लेकिन वो हराम नहीं होती, लेकिन कोई दूसरा जानवर मछली के अलावा, तो वो यानी जो 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 खुश्की के जानवर होते हैं, तो उनका दम घुट गया हो तो फिर वो मुनखनिकातुन आते हैं। अगरचे मुनखनिका और मौकूदा भी मैता के अंदर ही दाखिल है, क्योंकि दम घुट गया तो भाई वो मुर्दार हो गया ना, और मौकूदा जो है जो कि क्या था जिसको कि चोट लगी हो उससे वो मर गया हो, तो वो भी मुर्दार ही कहलाता है। लेकिन अहले जाहिलियत उनको जायज समझते थे, इसलिए खसूसी जिक्र किया गया है। जैसे पहले भी कई दफा बात हो चुकी है कि अगरचे के कोई लफ्ज जो है वो ऑल एनकम्पसिंग हो, उसके अंदर ऑलरेडी बाकी सारी चीजें भी शामिल हों, लेकिन फिर भी उसके अंदर से कुछ चीजें खास करके अलग से बयान कर दी जाती हैं, क्योंकि उनका एक अलग मुकाम था, उनकी एक अलग वैल्यू। इसकी मिसालें आती रहती हैं दरस कुरान के अंदर, इस वक्त मेरे ध्यान में और कोई मिसाल नहीं आ रही, आपके ध्यान में हो तो बता सकते हैं, लेकिन आई रिमेम्बर कई दफा इसके ऊपर बात हो चुकी है। जैसे जैसे ये मिसालें आती हैं वैसे वैसे बात होती है हमेशा। अच्छा, छठी चीज, मौकूजा, यानी वो जानवर जो जरबे शरीर के जरिए से हलाक हुआ हो, जैसे लाठी या पत्थर वगैरह से मारा गया हो, और जो तीर किसी शिकार को इस तरह कत्ल कर दे कि धार की तरफ से ना लगे। ठीक है, यानी जिसका जो शार्प एज है ना, जो उसकी नुकीली साइड है, उधर से ना लगे बल्कि तीर की जरब से मर जाए, वो भी मौकूजा में दाखिल होकर हराम है। ठीक है, यानी जैसे कोई मुर्गी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, यानी शायद कोई बड़ा जानवर तो तीर की जरब से हलाक ना हो, कि उसके अंदर तीर घुसा तो नहीं है शार्प एज से, लेकिन बस तीर लगा, और तीर तो पतली सी एक चीज होती है ना, लेकिन मुर्गी जैसे तो तीर लगा उसको ऐसे जोर से तो हलाक हो गई। ठीक है, तो अब कोई कह रहे कि भाई तीर जो है वो तीर से तो शिकार करना जायज था, तो ये तीरी से तो हलाक हुई है, तो इस वजह से ये हलाल होनी चाहिए, तो नहीं। इसका जवाब क्या है कि तीर की जो शार्प एज है ना, नोकीली जो साइड है, वो उसके अंदर घुसे, उसको ऐसे जख्मी करें कि उसके अंदर से खून निकलना शुरू हो जाए, ठीक है, तब जो है वो हलाल होगी, वरना वो हलाल नहीं, या कोई भी जानवर। ठीक है, तो डेथ बाय एनी ब्लंट थिंग, हाँ, ये मौकूजा जो है वो ब्लंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, उस साइड से, चाहे वो तीर ही की ब्लंट साइड हो, या नेजा या भाला जो कि बहुत भारी होता है, लेकिन उसकी एक शार्प एज भी होती है, लेकिन वो इतना भारी होता है कि उसकी चोट से कोई हलाक हो सकता है। ठीक है, तो वो हलाल नहीं होगा। हजरत अदी बिन हातिम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि मैं बाज़ औक़ात मेराज तीर से शिकार करता हूँ। ये मेराज का मैं देख नहीं सका, लेकिन ये गालबन उसी किस्म का कोई जो कि भारी और ऐसी चीज हो कि जिसकी जो है ना वो चोट से बंदा हलाक हो जाए बगैर जख्मी, यानी वो जानवर हलाक हो जाए बगैर उसको जख्मी किए। तो अगर शिकार उससे मर जाए तो क्या मैं उसको खा सकता हूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर वो जानवर अर्ज़े तीर की चोट से मरा है तो वो मौकूजा में दाखिल है, यानी मेराज तीर जो है ना, अर्ज तीर की चोट से मरा है तो वो मौकूजा में दाखिल है, उसको मत खाओ। और अगर धार की तरफ से लगा है और उसने जख्म कर दिया है तो तुम खा सकते हो। ठीक है, जख्म कर दिया है का क्या मतलब? खून निकलना शुरू हो गया। ये रिवायत जसास ने अहकाम कुरान में अपनी इसनाद से नकल की है। इसमें शर्त यह है कि तीर फेंकने के वक्त बिस्मिल्लाह कहकर फेंका गया हो। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह कहना भी जो है वो उसकी एक शर्त है। अच्छा, अब जो है वो आज के जमाने के हिसाब से जो शिकार बंदूक की गोली से हलाक हो गया तो उसको भी फुकहा ने मकूजा में दाखिल और हराम करार दिया। ठीक है, बंदूक की गोली चाहे वो छर्रे वाली बंदूक हो जिसको हमारे यहाँ वो एयर गन कहते हैं ना, तो उससे हो या किसी और किस्म की बंदूक की गोली हो तो उसको लगने से वो हलाक हो गया बस। ठीक है ना, आप उस तक पहुंच करके उसको जबा नहीं कर सके तो वो हराम है, हलाल है। ठीक है, क्योंकि ये भी मकूजा यानी डेथ बाय एनी ब्लंट थिंग की उससे आए। ठीक है, गोली लगने से खून जो है ना वो बहुत ही थोड़ा सा निकलता है। ठीक है, अगर निकलता भी है ना तो बहुत थोड़ा सा निकलता है। तीर वाला जो जख्म है वो बिल्कुल डिफरेंट किस्म का जख्म होता है। हत्ता कि फतावे में कहीं पढ़ा था कि शायद बिनोरी टाउन का एक फतवा था जिसमें था कि अगर बंदूक की गोली बिल्कुल तीर की शक्ल की हो, यानी इस तरह का कोई गुलेल टाइप की कोई चीज हो या बंदूक के अंदर जो है ना वो जैसे वो क्या कहते हैं उसको डार्ट, ठीक है, डार्ट टाइप की जो है ना वो हो उसकी गोली हो, ठीक है, जिसका के शार्प एज हो, उससे जो है वो हलाक किया जाए यानी उसको उसको मारा जाए ना जानवर को, तो उसको मारने से फिर वैसे ही खून निकले जैसे जैसे कि तीर के मारने से निकलता है, तो फिर जो है वो ठीक है। ठीक है, तो फिर जानवर जो है वो हलाल है, लेकिन बिस्मिल्लाह कह करके वो तीर फेंका गया। मेराज तीर का दरमियानी मोटा हिस्सा, मेराज की इन्होंने तारीफ बिनोरी टाउन के उसे निकाल करके बतना लिखी है कि तीर का दरमियानी मोटा हिस्सा, तो मेराज तीर से शिकार, हाँ मतलब जाहिर उन्होंने लिखा तो ऑफकोर्स ऐसे ही है, हम कोई थोड़ी उसे खराब कर सकते हैं, लेकिन जो यहाँ की इबारत थी उससे ऐसे ही लग रहा था कि कोई ऐसे किस्म का तीर है के जिसके के कोई ऐसा हिस्सा है जिससे के जानवर हलाक हो सकता है बगैर खून निकले हुए, वरना एक एक नॉर्मल तीर जो नजर आता है ना, जो हमने तो खैर कभी ये सब नहीं किए आजकल, वैसे बाय द वे आर्चरी वगैरह माशाल्लाह एक एक बाकायदा स्पोर्ट के तौर पर भी हमारे बच्चे भी वैसे खेलते हैं, लेकिन वो फिर दूसरे किस्म का तीर होता है, तो वो जो हम इवन जो हम देखते भी है ना कभी दुकान में देख लिया या कभी जो है वो ऐसी तस्वीर वगैरह में देख लिया, तो वो तीर ऐसा नहीं होता कि वो जानवर को हलाक कर दे, वो पतला सा तीर होता है, तो ये जो मेराज तीर है ये फिर गालबन कोई वही आपके ना मोटा हिस्से वाला वाला तीर होता है। तो अच्छा, जो शिकार बंदूक की गोली से हलाक हुआ उसको भी फुकहा ने मकबूजा में दाखिल और हराम करार दिया है। इमाम जसास रहमतुल्लाह ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह से नकल किया है कि वो फरमाते थे कि अल मक्तूरतुम बिल बंदूकी हदी तिलकल मक़बूज़ा, कि वो मक़बूज़ा ही जो बंदूक से बंदका, तो अरबी में बंदूक का लफ्ज़ भी देखा, जो मक़तूल हुआ बंदूक से यानी बंदूक के जरिए से जो जानवर कत्ल किया गया है वो वही मक़बूज़ा है जिसके हराम, तिलकल मक़बूज़ा यानी वो मक़बूज़ा ही है। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह शाह इमाम शाफी इमाम मालिक रहमतुल्लाह सब इस पर मुत्तफिक हैं। ठीक है, उनके जमाने में तो बंदूक होती नहीं थी, वो कैसे मुत्तफिक हो गए भाई, उनके जो जो फिका के या उनके मसलक के जो मुज्तहिद हजरात आज के दौर में मौजूद हैं या बंदूक के दौर में जिन्होंने देखा बंदूक को, तो उनका फतवा इसी के ऊपर। अच्छा, सातवीं मुतरदिया यानी वो जानवर जो किसी पहाड़ टीले या ऊंची इमारत या कुएं वगैरह में गिर कर मर जाए वो भी हराम है, इसीलिए हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि अगर कोई शिकार पहाड़ पर खड़ा है और तुमने तीर बिस्मिल्लाह पढ़कर उस पर फेंका और वो तीर की जद से नीचे गिर कर मर गया तो उसको मत खाओ। ठीक है, यानी वो नीचे गिरा है ना तो तुम ये मत कहो कि मेरे तीर से मरा होगा, बल्कि ये कहो, ये गुमान करो कि वो गिर करके मरा हो। ठीक है, क्यों भाई, तीर से भी तो मर सकता है ना, लेकिन गिर के मरने को फौकियत दो, प्रेफरेंस जो है वो गिर के मरने वाली वाली पॉसिबिलिटी को दो। ठीक है, इस एहतमाल को तुम तरजीह दो कि वो गिर के मराओ, गिरने से मराओ, क्यों, इसलिए कि जो गोश्त है ना उसके बारे में शरीयत का मौकफ जो है वो बिल्कुल उलट है। ठीक है, जानदार का गोश्त जो है उसके बारे में शरीयत का मौकफ, शरीयत का जो स्टैंड है वो बिल्कुल ऑपोजिट है, अपोज टू अदर थिंग्स, दूसरी चीजें जो गोश्त नहीं होती, ठीक है, लेकिन खाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनके लिए मौकफ शरीयत का क्या है, यानी शरीयत का क्या 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 गाइडेंस है, कि हलाल अंटिल प्रोविन हराम, इट्स हलाल अंटिल प्रोविन हराम, बाय डिफॉल्ट इसको कहते हैं कि वो हलाल है, जबकि यानी अनलेस प्रोविन हराम का मतलब कोई आपको कोई ना कोई शरीयत के अंदर दलील मिलती है उनके हराम होने की, वरना तो वो हलाल है, ठीक है। जबकि गोश्त के लिए क्या है कि इट्स हराम अंटिल प्रोविन हलाल, ठीक है ना, अंटिल प्रोविन हलाल। तो अब जो है ना इहतमाल जो है वो, जो अगर उसके हराम होने का एहतमाल है ना, तो इसको बौखला दी जाएगी, ठीक है। अच्छा दूसरी बात ये कि गोश्त के हुर्मत का इतना अहमियत है हमारे दीन के अंदर कि जबाह से लेकर के प्लेट तक, जबाह से लेकर के हमारी प्लेट तक, ठीक है ना, वो मुसलमान की निगाह से ओझल ना हो, ठीक है। यानी जबाह के बाद वो मरा किस तरह से है, जबाही से मरा है या किसी और वजह से मरा है, वो भी किसी मुसलमान ने देखा हो। फिर उसके बाद जो है वो पैकेजिंग वगैरह जो उसकी हुई है, फिर उसके बाद जो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह जो हुई है, ठीक है, और फिर जो है वो आपके घर तक जो वो पहुंचा है, ठीक है, ये सारा काम जो है ना वो मुसलमान के साथ, मुसलमान के सामने हुआ। अगर मुसलमान के सामने नहीं हुआ बल्कि गैर मुस्लिमों की मिल्कियत में चला गया, कोई प्रोसेस यानी जिसको कहते हैं ना आपका सप्लाई चेन, सप्लाई चेन का कोई वाला पार्ट जो है वो नॉन मुस्लिम्स उसको सुपरवाइज कर रहे थे, मुस्लिम्स नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, तो फिर वो दैट्स नॉट ट्रस्टवर्थी। अब हम उसको ट्रस्ट नहीं करेंगे, हम उसको नहीं, हम उसको अवॉइड करें, ठीक है, चलिए उसको अवॉइड करते हैं। तो गोश्त का ये मामला है। तो अब जो है ना ये जो बकरा जो है वो गिरा है तो आपकी निगाहों से तो ओझल था, ठीक है, कि वो भाई किस तरह से मरा है ना, तो इस वजह से गिल्टी अंटिल प्रोवन इनोसेंट, हराम अंटिल प्रोवन हलाल, ठीक है। वॉट अबाउट द न्यू डेवलप्ड लैब मीट विच इज अवेलेबल इन मार्केट्स, आपका क्या ख्याल है, आप खाएंगे उसको? मैं तो नहीं खाऊंगा भाई, ठीक है। बाकी ये क्या आप मुझसे ज्यादा तो पूछ लें, मेरा नहीं ख्याल कि वो उसको हलाल कहते होंगे, लेकिन पता नहीं, आई डोंट नो उसकी क्या एग्जैक्ट डिटेल्स हैं कि वो एक्चुअल मीट की डेफिनेशन में भी आता है या सिंथेटिकली सम लाइक वेजिटेबल स्टफ जिसको कि मीट की टेस्ट दे करके या मीट की फॉर्म दे करके इट्स नॉट मीट, राइट, तो फिर वो मीट है ही नहीं, तो फिर उसके ऊपर ये मीट का फतवा वतवा वगैरह भी नहीं लगेगा। इफ द एरो हिट्स डायरेक्टली टू ए वाइटल ऑर्गन सच एज हार्ट, विल द सेम रूल बी अप्लाइड? वाइटल ऑर्गन हार्ट पे लगे, भाई वैसे तो साफ सी सीधी सी बात है, ये शार्प एरो जो है वो बदन पे लगे। अब बदन के किसी अनवाइटल पे लगे या वाइटल पे लगे, ठीक है, क्योंकि खून तो हार्ट पे लगेगा तो सबसे ज्यादा खून निकलेगा, मेरा ख्याल है, डॉक्टर साहब बता सकते हैं, लेकिन हार्ट पे लगेगा तो सबसे ज्यादा ही खून निकलेगा, और यही तो डिजायर्ड है कि उसके अंदर से हार्ट खून जो है वो ज्यादा से ज्यादा निकले, ठीक है। अच्छा 3 मिनट है, तो कहते हैं कि इसमें भी, क्योंकि इसमें भी इहतमाल है कि उसकी मौत तीर की जद से ना हो, गिरने के सदमे से हो, तो वो मुतरद्दिया में दाखिल हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी परिंदे पर तीर फेंका, वो पानी में गिर गया, तो उसके खाने को भी इसी बिना पर मना फरमाया है कि ये भी इहतमाल है कि उसकी मौत डूबने से वाकई हुई, ठीक है, क्योंकि आपके आंखों के सामने जो है वो उसकी मौत वाकई नहीं हुई, बल्कि वो डूब गया, फिर जो है इस वजह से इसकी मौत हो गई। अहले किताब का जबीहा और रेस्टोरेंट्स में खाना सही है, ठीक है, ये जो सवाल है ना अहले किताब वाला, ये अभी आगे आ रहा है, ठीक है, और वो जबीहा के अलावा एक और भी मसला आ रहा है, बहुत खतरनाक वाला मसला है, अहले किताब की खवातीन से शादी करना, ठीक है। तो जब तक वो आएगा तो फिर इंशाल्लाह उसके ऊपर तफसील से बात होगी, बल्कि हजरत ने काफी इसको तफसील से यहाँ पे भी जिक्र किया है, लेकिन इसका जो है ना वो बड़ा क्विक आंसर आपको ये दे देते हैं अभी कि भाई आज के दौर के अंदर अहले किताब जो है ना, पहली बात तो ये कि आपको कंफर्म होता ही नहीं है कि कौन अहले किताब है कौन अहले किताब नहीं, ठीक है, तो इस वजह से ना कोई क्रिश्चियन साउंडिंग नेम या सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्री का मतलब ये नहीं है कि अब वहां पे जो काम हो रहा है वो अहले किताब कर रहे हैं, ठीक है, पहली बात कि आपको पता ही नहीं है कि आप ब्रिटेन में हैं कि फ्रांस में हैं, फ्रांस तो वैसे भी जो है वो एंटी रिलीजन है पूरा का पूरा ना, हर हर किस्म के रिलीजन के खिलाफ, लेकिन आप जो है वो स्पेन में हैं जो कि सो कॉल्ड क्रिश्चियन कंट्री है, लेकिन आपको नहीं पता कि स्पेन के अंदर जो है वो एलेक वो कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये लोग जो है ना, फिर इनमें से बहुत सारे जो है वो एथियस्ट होते हैं, और जो एथियस्ट नहीं होते ना, उन्होंने अपनी एक नई रिलीजन बनाया हुआ है जिसको एग्नोस्टिसिज्म भी कहते हैं। एग्नोस्टिक यानी वी डोंट बिलीव इन एनीथिंग एंड वी डोंट रिफ्यूज एनीथिंग। तो अब वो कहते हैं कि मरने के बाद जो है ना, अगर अगर तो जीसस क्राइस्ट होए तो हम बच जाएंगे क्योंकि हमने रिफ्यूज तो नहीं किया जीसस क्राइस्ट को, लेकिन अगर नहीं होए तो फिर मसला ही कोई नहीं है। तो उन्होंने एक नया अपना अपनी तरफ से बना लिया एग्नोस्टिसिज्म। तो भाई इतने तो इनमें एग्नोस्टिक्स होते हैं, इतने तो इनमें एथियस्ट होते हैं, फिर इनमें इतने सारे जो है वो कोई सिख बन जाता है, कोई हिंदू बन जाता है, कोई कुछ और बन जाता है, आपको कुछ पता नहीं होता। अमेरिका यूरोप वगैरह का ये मामला है। और दूसरी बात जो कि इससे भी ज्यादा हाँ रेलिवेंट शायद आपके लिए हो, वो ये है कि अगर जबीहा का तरीका गलत हो, जैसे कि आप जो हैं वो अपने बकरे को जबह कर रहे हैं, लेकिन आपने जो है बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ा, दिल में भी आपके ईमान है, सब कुछ है, लेकिन आपने जबीहा जो है ना वो गलत किया है, तो वो फिर जानवर जो है वो आपके लिए हलाल नहीं होगा बल्कि वो मुर्दार में आ जाएगा, राइट। तो आप तो मुसलमान है ना, नबी अलैहिस्सलाम नबी आखिर जमा के ऊपर ईमान रखने वाले हैं, लेकिन तरीका आपका गलत है, वो भी हराम, ठीक है। तो अगर कोई अहले किताब हो भी लेकिन वो गलत तरीके से, अब नहीं करता वो उस तरीके से जबा जैसे कि पहले करता था, उस जमाने में वो भी इसी तरीके से जबा करते थे जिस तरह से कि आज एक नेक मुसलमान जबा करता है, ठीक है, इस वजह से उनका जबिया जो है वो हलाल करार दिया गया था। इसलिए नहीं कि वो जैसे भी करते फिरें वो हलाल है क्योंकि वो अहले किताब, ऐसा नहीं था, ठीक है। तो दो बातों में इंशाल्लाह आपको इसका जवाब उम्मीद है कि मिल गया होगा। अच्छा, अब जो है डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह अपना काम किया है, तो वो लिख रहे हैं कि दिल पे ना लगे तो बेहतर है क्योंकि दिल खून को पंप करता है, अगर कहीं और लगेगा तो खून खूब बहेगा, दिल पर लगेगा तो दिल बंद हो जाएगा और खून बहना बंद हो जाएगा, माशाल्लाह। ये आपने पते की बात बताई, ये हमें नहीं पता ये वाली बात, ठीक है। तो खून बहना ही बंद हो जाएगा, बिल्कुल सही, इतनी तो हमारा जहन ही नहीं गया उस तरफ, जिसका काम उसी को साजे, इसी को कहते हैं उर्दू में। जजाकुमुल्लाह खैर कसीरा। अच्छा, टाइम चूंकि मुकम्मल हो गया है तो हम यहाँ पे फिर रोकते हैं, क्योंकि अभी तो ये काफी लंबी इसकी डिस्कशन चल रही है इसी एक आयत की, और फिर जो है वो चौथी आयत आएगी और फिर पांचवीं आयत जिसके अंदर अहले किताब की खवातीन का जिक्र फिर पांचवीं आयत के अंदर आता है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे बैठने को मिलने को और अपने दीन का इल्म हासिल करने को कबूल फरमाए, उसको हमारे हक में हुज्जत बनाए, हम से किसी के भी खिलाफ हुज्जत ना बनाए। अलहम्दुलिल्लाह।